अभी आप एंजॉय कर रहे हैं थैंक्स गिविंग हॉलीडेज, इसके पीछे कोई भी हिस्ट्री हो, पर ये एक अच्छा मौका है कि हमें अपने व्यवहार को, अपने आचरण को एनालाइज करें कि हम अपने लाइफ में कितना कहीं ग्रैटिट्यूड को काम तो नहीं कर रहे, जहां ग्रेटफुल होना चाहिए ऐसा तो नहीं कि हम उसका उल्टा हो रहे हैं, थैंकलेस होते जा रहे हैं। तो इट्स एन गुड अपॉर्चुनिटी अपने आप को समझने की, जानने की कि हमारी जो लेवल ऑफ ग्रेटफुलनेस है वो बढ़ी रही है या घट रही है। इससे फायदा किसको है? ये कोई कस्टम नहीं है, ये कोई इथो नहीं है, या ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, या दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। जैसे कि हम बहुत सारे चीजों पर डिस्कस करते हैं, आफ्टर ऑल इंसान खुद सुखी रहना चाहता है, और सुखी रहने के लिए जितने भी चीजें हमारे लिए सोशल बिहेवियर्स हमें बताए गए हैं धर्म के नाम पर, अलग अलग चीजों के नाम पर, वो सोसाइटी के लिए नहीं होता, वो हमारे खुशी के लिए होता है। व्यक्ति जितने ज्यादा से ज्यादा इन पॉजिटिव वर्च्यूज को, एटीट्यूड को अपने अंदर समाता है, उतना ज्यादा वो खुश रहता है, उतना जीवन हरा भरा होता है। उन्हीं में से एक होता है कि अपने अंदर वो ग्रेटफुलनेस को कल्टीवेट करने की। व्यक्ति जितना ज्यादा ग्रेटफुल होता है अंदर, वो नेचुरली हो या खुद कल्टीवेट करके अपने आप को ग्रेटफुल बनाए फॉर एवरी सिंगल थिंग कम्स टू हिज लाइफ और हर लाइफ, तो व्यक्ति उतना ज्यादा अंदर से सुंदर बनता है, उतना ज्यादा खुश रहता है। हमारे जीवन में जो स्ट्रेस है, जो दुख है, जो परेशानी है, उनमें से 90% प्रॉब्लम्स हमारे मन का क्रिएशन है, हमारा क्रिएशन नहीं है। ये कहना गलत है कि हम ही क्रिएट करते हैं, कोई नहीं चाहता है कि हम दुखी रहें, पर यह हमारे मन का क्रिएशन है, और हम चाहें तो उस मन को ऐसा बना सकते हैं कि उसमें हम सुख फील कर सकते हैं, खुशी फील कर सकते हैं। अगर हम उसको केयरलेसली इग्नोर करते हैं अपने मन को, तो वो हमें जीवन भर हर सिचुएशन में दुखी देगा। सब कुछ होने पर भी लोग दुखी हैं, हेल्दी होने पर भी दुखी हैं, पावरफुल होने पर भी दुखी हैं, सोशल रिकॉग्नाइजेशन होने पर भी दुखी हैं। ऐसा नहीं कि दुखी कुछ खराब चीज होने पर होता है, खराब चीज हम ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं, कितने भी अच्छे स्थिति पर हो। और जब हम दुखी होते हैं लाइफ में किसी भी लेवल में होने पर, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जो ग्रेटफुलनेस है वो कम होता जा रहा है। ग्रेटफुलनेस क्या चीज है? थैंकफुल होना कि जो मेरे पास है मैं उसको रिकॉग्नाइज करता हूं और उसके लिए मैं थैंक्स करता हूं, जिन जिनका उसके लिए कंट्रीब्यूशन है, ईश्वर से लेकर मेरे घर के बच्चों तक, या नोइंगली अननोइंगली जिनका भी मेरे जीवन में खुशी लाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, वो कोई साइंटिस्ट जिसको हम किसी किताबों में पढ़ते हैं, जिसने ये टीवी आविष्कार किया, ये लाइट आविष्कार किया, ये घड़ी आविष्कार की, ये मेडिकल फील्ड में लाखों चीजें बनाया जिसके कारण मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कोई खुशी आई, वो सब के प्रति हमारा ग्रेटफुलनेस होना चाहिए अंदर। इसीलिए नहीं कि हम, ये हमारी ड्यूटी है, इसीलिए कि अगर तुम खुश रहना चाहते हो देन यू हैव टू कल्टीवेट दैट ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इनसाइड यू। और जब सब कुछ होने पर भी ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आता है, समस्याएं नहीं आती है, किसी में कम है, किसी में बहुत ज्यादा है, वी हैव टू फेस इट, उसको भाग करके हम नहीं दौड़ सकते, छोड़ के नहीं भाग सकते। उसको फेस करते हुए भी अगर हम दुख से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अपने मन को ऐसा बनाएं कि हम दुख में भी सुख को ढूंढ सकें, और वो तभी संभव है अगर हमारे पास जो है उसको हम रिकॉग्नाइज करें, हम एक्सेप्ट करें कि मेरे पास क्या क्या है। जब हम इसको एक्सेप्ट करने लगते हैं तो फिर अपने आप हमारे दुख कम होने लगते हैं। महाभारत में शांति पर्व में एक छोटी कहानी आती है, एक बहुत बड़े राजा, बड़े पावरफुल, बड़े धनी थे और युद्ध में हार गए। तो युद्ध में हार गए तो सब कुछ छिन गया उनसे, बड़े अच्छे राजा थे, पराक्रमी थे, योद्धा थे, वीर थे, सारे अच्छे गुण था, ईश्वर भक्त थे, पर युद्ध में हार गए तो सब कुछ छीन गया और वो भाग गए जंगलों में, इधर उधर भटकते रहे, बड़े डिप्रेशन में थे, निराश जीवन था और अपने आप को कोसते थे, भगवान को कोसते थे, भाग्य को कोसते थे, जंगल में घूमते रहे। जंगल में इसीलिए कि कहीं कोई रास्ता मिले, कोई साथ मिले, कोई जो जीता हुआ राजा अगर पकड़ ले तो फिर फांसी चढ़ा देगा। ये पेड़ के नीचे रो रहे थे अपने पास्ट को सोचते हुए कि कितना मैं बड़ा राजा था, मेरे पास कितने क्या क्या चीजें था और वो सब चला गया, और प्रेजेंट को देख करके अब मैं किस हालत में हूं, परेशान थे, रो रहे थे। ये पक्षी ऊपर बैठा हुआ था, उस पक्षी ने सुना, उसे ये सहा नहीं गया, वो नीचे आकर राजा से बोलता है कि आप दुखी क्यों हो। राजा ने अपनी आप बीती सुनाई, मैं कितना महान राजा था, कितना धार्मिक था, कितने अपने प्रजाओं का ख्याल रखता था, कितना धनी था, कितना पावर था, पर आज सब कुछ मेरे से छीन गया है, मैं क्या करूं, जीवन बेकार हो गया, इस लाइफ में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ कोस रहा था। पक्षी ने कहा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि तुम्हारे साथ सब कुछ अन्याय हुआ है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास ऐसे कुछ हैं जो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास ये खूबसूरत हाथ हैं, पैर हैं, इतना सुंदर शरीर है, इंसानी शरीर है जो मेरे पास नहीं है। मैं तो नहीं रोता हूं, मैं पक्षी हूं, मैं भी सोचता हूं काश मैं इंसान होता, मेरे दो हाथ होते, मैं हाथों से खाना बटोर लेता, पर मुझे चोंच लगानी पड़ती है, मैं पैरों से दौड़ जाता, मैं बुद्धि लगा करके कोई हथियार बना लेता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है, तब भी मैं दुखी नहीं हूं, मेरे पास दो पंख हैं, छोटा सा चोंच है, उतने में ही मैं गुजारा करता हूं, मैं जानता हूं तुम मेरे से लाखों करोड़ों अरबों गुना ज्यादा शक्तिमान हो, उसके बावजूद भी मुझे कोई दुख नहीं है। इसीलिए ये मत सोचो कि तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास ये सुंदर शरीर है, हाथ है, पैर है, बुद्धि है, और जिसको इस संसार में खरबों बिलियन ट्रिलियन सब प्राणी जिसके लिए तरसते हैं, और वो सब कुछ तुम्हारे पास है। तो इसीलिए ये मत सोचो कि तेरे पास कुछ नहीं है, वो दोबारा आ सकता है, जो तुम्हारे पास था वो ट्रांजिटरी था, वो अस्थाई था, किसी के पास रहता है, किसी के पास चला जाता है, तुम दोबारा इसको पा सकते हो, पर जब तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखोगे और जो तुम्हारे पास है उस पर गर्व करोगे, उसको रिकॉग्नाइज करोगे। देवियों सज्जनों, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, इसीलिए कि जो हमारे पास है हम इसको इग्नोर करते हैं, और जिसके कारण वो हमारे पास है उसको भी हम ग्रांटेड लेते हैं। पर जिस दिन हम ये अप्रिसिएशन सीख जाएं कि मेरे पास क्या है और जिनके कारण है, तो मेरे जीवन में बहुत कुछ दुख होने पर भी मैं सुखी रह सकता हूं, आफ्टर ऑल मेरा क्या उद्देश्य है, हर परिस्थिति में मैं सुखी रहूं और समाज में रहेंगे तो उतार चढ़ाव तो होगा ही। तो दिस अप्रिशिएशन इज ए वेरी ब्यूटीफुल एंड सोलफुल क्वालिटी अवेलेबल टू एवरी वन इन एवरी सर्कमस्टांसेस। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि भगवान ने उसे छीन लिया है अप्रिशिएशन की क्वालिटी एबिलिटी को। हम इसको यूज नहीं करते हैं या कम करते हैं, या कोई पूरा करता है कोई कम करता है। जब हम अप्रिशिएशन की बात करते हैं या थैंकफुल होने की बात करते हैं, मैं उस फॉर्मल थैंक्स सॉरी इसकी बात नहीं कर रहा हूं जो एक हैबिचुअल हैबिट हो चुका है एक पर्टिकुलर कल्चर में और जो एक पार्ट ऑफ गुड मैनर है। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बड़ी अच्छी चीज है, एक सोशल नॉर्म है। बहुत सारे देशों में बहुत सारी सोसाइटी में ये नॉर्म नहीं है थैंक्स बोलना सॉरी बोलना प्लीज बोलना बार बार। इसको आप मिस इंटरप्रेट मत करिए कि जिस सोसाइटी में ये नहीं है वो बहुत बैड मैनरली लोग हैं, जहां है वो गुड मैनरली ने। ये कल्चरली डिफरेंट डिफरेंस है और कुछ नहीं है। एक पर्टिकुलर कल्चर में ये कल्टिवेट किया गया कि सोसाइटी में आप हर किसी को थैंक्स बोले प्लीज बोले ऐसा बोले। ये अच्छा है अगर सभी सोसाइटी में आए, इसमें कोई बात नहीं है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जिस सोसाइटी में लोग थैंक्स नहीं बोलते, क्योंकि बोलते बोलते भी हम इतना ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं वो ग्रैटिट्यूड का सेंस कहीं खो जाता है, सिर्फ वर्ड के साथ हम खिलवाड़ करते हैं खेलते रहते हैं। तो आप 24 घंटे थैंक्स प्लीज करते रहते हैं सॉरी करते हैं या नहीं करते ये मैटर नहीं करता। आपके अंदर वो जो ग्रेटफुलनेस की फीलिंग अगर हो वो आपके एक्सप्रेशन में दिखता है, आपके फेस में दिखता है, आपकी बॉडी एक्टिविटीज में वो दिखता है। एक अमेरिकन ट्रेवलर लेडी है तो उन्होंने अपने एक यात्रा वृत्त जिसको आप ट्रेवल स्टोरी कहते हैं, जब आप घूमने जाते हैं आप उसकी स्टोरी बना के लिखते हैं, तो उन्होंने एक यात्रा वृत्त में लिखा, आई लर्न द रियल सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड व्हेन आई विजिटेड इंडिया। तो उसने उसमें लिखा कि जब मैं पहली बार इंडिया गया, वो लंदन की लेडी थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग है, जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, हर बात पर प्लीज सॉरी थैंक्स ये बोलने की जो आदत है, सुनने की आदत है। अगर मैं लंदन में होती और किसी दुकानदार ने मुझे प्लीज नहीं बोलता थैंक्स नहीं बोलता तो मुझे लगता कितना बैड मैनरली है, कितना रूड है। और इंडिया में जनरली लोग ऐसा नहीं बोलते, आजकल थोड़े बहुत शहरों में लोग हल्की फुल्की बोलने लगे हैं, पर जनरली ओवरऑल इंडियन सोसाइटी में इस तरह की सोशल मैनर नहीं है। तो बोला शुरू शुरू में मुझे अजीब लगा बैड लगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे मिली कि इवन बहुत सारे जगह मुझे लोगों ने जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे इस बात के लिए डांटा कि तुम कुछ जरूरत से ज्यादा थैंक्स और सॉरी एंड प्लीज बोलते हो। तो वो एक सोसाइटी ऐसी है जहां फॉर्मेलिटी को अच्छी नहीं मानी जाती है बहुत ज्यादा, और ये एक सोसाइटी है जहां फॉर्मेलिटी को गुड मैनर के साथ जोड़ा जाता है। पर जब मैंने वहां महीनों महीनों रही तब मुझे पता चला कि थैंकफुल होने के लिए आप एक हैबिचुअल ट्रेंड में बार बार थैंक्स या प्लीज बोलते ये ज्यादा मैटर नहीं करता है, कभी कभी ये मैकेनिकल हो जाता है। पर ये सब आप बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इससे बड़ी बात होती है कि आप ग्रेटफुल फील करते हैं वो लोगों के बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, व्यक्ति की ओवरऑल एटीट्यूड से आप समझते हैं, तब आप अंदर से बड़ी अजीब सी खुशी फील करते हैं। इसलिए ऐसा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप कितने ज्यादा वर्ड्स यूज करते हैं, थैंक यू वेरी मच वगैरह, ना इसमें कोई खराबी है ना कोई अच्छा अच्छी चीज है। ये हम उसकी बात कर रहे हैं कि आप जब अपने मन में इसको कल्टीवेट करते हैं, जब आप अंदर इसको फील करते हैं कि आप ग्रेटफुल हो, आप उसके लिए कोई वर्ड यूज करते हैं नहीं करते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो आपके एटीट्यूड में दिखता है कि आप ग्रेटफुल हो, और ये आपकी पर्सनालिटी को खूबसूरत बनाता है, दूसरों को भी एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस देता है। आपके मुंह से क्या निकला वो बड़ी बात नहीं, आपकी जो एटीट्यूड ऐसा हुआ कि आपको भी अच्छा लगता है दूसरे को भी अच्छा लगता है। इसीलिए मेरा फोकस है कि आपको ग्रेटफुल होने से सामने वाले के लिए फायदा है नुकसान है अच्छा लगता है बात नहीं है, हमें क्या फायदा होता है। और बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ये मानते हैं जिस व्यक्ति के अंदर जितना सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है वो अपने स्ट्रेस को उतना कम कर सकता है, वो अपनी खुशी को बढ़ा सकता है और वो एक बेटर लाइफ जी सकता है और दूसरों की बेटर लाइफ जीने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि जब आप खुश हो तो आपके आसपास रहने वाले लोग भी खुशी का इस वाइब्रेशन को फील करते हैं, और जब आप दुखी हो गुस्से में हो परेशानी में हो तो आपके आसपास के लोग भी उसको फील करते हैं और उससे दूसरे भी दुखी होते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को कल्टीवेट करें। ध्यान रखिए, ये जैसे सत्य बोलना, ऑनेस्ट होना, पोलाइट होना, ये सब बड़े सारे वर्च्यूज है, इसी तरह ग्रेटफुल होना ये एक हमारा बहुत बड़ी वर्च्यू या एक बहुत बड़ा धर्म होता है। इसका अपोजिट जो थैंकलेस होना, इसको हिंदी में संस्कृत में कृतज्ञ बोलते हैं और हिंदी में नमक हराम बोलते हैं वगैरह वगैरह, तो ये एक बहुत बड़ा दोष होता है इंसान में, और जिसके अंदर ये क्वालिटी आती है उसके लिए आपको कोई बाहरी दुनिया से सीखने की समझने की जरूरत नहीं है, वो आपके अपना अंदर का गुण होना चाहिए। जीवन में कितने भी छोटी सी चीज आपको मिली हो उसके लिए जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो वो आपके जीवन में बदलाव लाता है। देवियों सज्जनों, खुशी आने से आप ग्रेटफुल होते हैं ये झूठ है, पर जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो खुशी आती है। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में सारे पावरफुल लोग खुशी खुश होते, सारे धनी लोग खुश होते, जिनके पास सब कुछ है वो खुश मिलते, पर ऐसा नहीं होता है। गरीब भी दुखी है धनी भी दुखी मिलता है, गरीब भी खुश मिलता है धनी भी खुश मिलता है। जो देश का प्रेसिडेंट है उसमें भी अपने दुख हैं, जो कहीं का कुछ नहीं पावरलेस है उसके भी सुख है। सुख अपने अंदर कल्टीवेट करना पड़ता है और बहुत सारे कारण उसमें होते हैं। वन ऑफ इंपॉर्टेंट कॉज इज वो ग्रेटफुल होना। जब हम सचमुच थैंकफुल होते हैं जो मेरे पास है उसके प्रति, और जिसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें कंट्रीब्यूशन है जो मेरे पास है, मेरे शरीर से लेकर मेरे जन्म से लेकर मेरी बुद्धि से लेकर मेरे रूप गुण से लेकर मेरे धन संपत्ति जो कुछ भी मेरे पास है उस सबके प्रति जब मैं ग्रेटफुल होता हूं तो मेरे अंदर खुशी आती है। और जब दुख आए तो हम इस चीज को याद कर सकते हैं कि भगवान ने मुझे कितना दिया है। जब हमें लगे कि हमसे कुछ छीन रहा है, नौकरी चली जा रही है, कुछ और घर में खराब बातें हो रही है, कुछ हमारे साथ खराब हो रहा है, जब सचमुच हम दुखी हैं परेशान हैं, तब अगर ये बात को याद करें कि मेरे पास कितना कुछ है, सब कुछ जाने के बावजूद भी, तो हमारा दुख कम हो सकता है। इसीलिए ग्रेटफुल होने से खुशी आती है और बढ़ती है। खुशी आने से ग्रेटफुल व्यक्ति होगा ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि खुशी की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कितने में खुश होंगे, आप हजार में खुश होंगे, लाखों में खुश होंगे, मिलियंस में खुश होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो अनंत है। सो डिप्रिसिएशन विदाउट अप्रिसिएशन इज हार्टलेसली डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव फॉर हू? फॉर माई सेल्फ। जब मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूं, अगेन आई एम सेइंग, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं कि आप वर्ड यूज करके क्या करते हैं नहीं करते हैं। पर आपके अंदर जब वो अप्रिशिएशन का फीलिंग नहीं होता है तो आप अपने लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जो इनग्रैटिट्यूड होना, ये बेसिकली व्यक्ति जब जरूरत से ज्यादा ईगो में भर जाता है तब वो थैंकलेस होने लगता है। नेचुरली जिसमें ज्यादा ईगो हो, जितना ज्यादा ईगो होगा वो खुद को उतना ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है। वो डिस्ट्रॉय करता है मतलब वो अपने आयु को कम करता है, क्योंकि उसके अंदर उतने ज्यादा स्ट्रेस होंगे। हर छोटी छोटी चीज में वो दुखी और परेशान रहने लगेगा। इसीलिए ये बेटर है कि हम इसका अपोजिट रास्ता चुने, ग्रेटफुल बने, अपने ईगो को कंट्रोल में रखें। हमारी समस्या जो मोटे तौर पर है कि हमारे लाइफ में जो अच्छी चीजें होती हैं, और इट्स ऑलवेज मोर देन 50% अच्छी चीजें होती है, बुरी सी बुरी हालत में भी व्यक्ति के जीवन में 50% से लेस देन 50% अच्छी चीजें नहीं होती है, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी। इवन किसी का एक हाथ पैर कट भी जाता है तो भी इट्स मोर देन 50% अच्छी चीजें उसकी लाइफ में है। हमारी समस्या है कि हम अच्छी चीजों को इग्नोर करते हैं। हम इसको वी आर टेकिंग इट इन ग्रांटेड। क्यों पता है? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरे साथ होना चाहिए, सारी अच्छी चीजें मेरे ही साथ होना चाहिए। क्योंकि एक्सपेक्टेड है और वो हो रहा है, वी डोंट केयर अबाउट इट। बुरी चीजों को, हम छोटी से छोटी चीजों को क्यों नोट करते हैं? हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। छोटी सी भी खराब चीज मेरे साथ होती है तो मैं रिएक्ट करने लगता हूं, अंदर की बात करता हूं, मेरे अंदर रिएक्शन बहुत बड़बड़ के आने लगता है। और अगर ये छोटी छोटी खराब चीजें मेरे लाइफ में होता रहे तो मैं इतना ज्यादा थैंकलेस हो जाता हूं, मेरा अपना जीवन ही हौचपच हो जाता है। इसीलिए जो जीवन में अच्छी चीजें हो रही है या हुई है मेरे साथ, इसको रिकॉग्नाइज करें और उसको अप्रिशिएट करें अपने अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को बोलें, बोलना अलग चीज है, वो सोशियल बिहेवियर है। आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप बोलें, इससे बेटर चीज कुछ नहीं हो सकता, पर फील करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब सचमुच आप फील करते हैं ग्रैटिट्यूड को तो वो आपके एटीट्यूड में दिखता है। आप हाथ जोड़ते हैं नहीं जोड़ते हैं, आप थैंक्स बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो मैटर नहीं करता, वो आपके एटीट्यूड में दिखता है। इसीलिए जीवन में जो भी परेशानियां आए वो ठीक है, उसमें दुख होना जायज है, पर हम उन लाखों करोड़ों चीजें जो हमारे साथ अच्छी चीजें हैं उसको हम जब ग्रांटेड लेते हैं तो दुख होता है। इसीलिए हमें उसको ओवरलुक नहीं करने की जरूरत है। हम भगवान के प्रति बहुत कम थैंकफुल होते हैं, कभी कभी इंसानों के प्रति ज्यादा थैंकफुल हो जाते हैं और भगवान के प्रति बहुत कम। बड़े अन्याय करते हैं हम प्रभु के साथ। कर छोटा सा कोई हमारा भला कर देता है, हम बार बार उसको थैंक्स करते रहते हैं, और बहुत कम मौका मिलता है जब हम ईश्वर को थैंक करते हैं, और बहुत ज्यादा मौका मिलता है जब हम ईश्वर को कोसते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार के साथ क्यों हुआ, वगैरह वगैरह। पर अगर आप एनालाइज करें, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में ऐसी लाखों घट चीजें हैं, अगर आप रोज बार बार थैंक्स करते रहें ईश्वर को तो भी पूरा नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ नहीं है कि आप 24 घंटे बैठ के थैंक गॉड करते रहिए। अगेन जस्ट एक्सेप्टिंग इट, रिकॉग्नाइजिंग इट, वो बड़ी बात होती है कि आपकी ग्रेटफुलनेस सामने आता है, आपके अंदर आता है। ईश्वर ने आपको जीवन दिया, आपके आने, आपके लिए आपके एक मां बाप दिया, आप घर दिया, आपके लिए आपके पैदा होने से पहले संसार को इतना खूबसूरत बना के रखा कि आप एंजॉय कर सको, आपके हाथ पैर मुंह इंटेलेक्ट बुद्धि सब कुछ सुरक्षित अच्छा रखा, बनाए रखा। ज्यादातर मंदिर जाने वाले लोगों को आप देखेंगे, मोर देन 75%, 3/4, कोई कैलकुलेशन नहीं है, अंदाज में कम बहुत हो सकते हैं, हम मंदिर शिकायत करने जाते हैं कि प्रभु मेरे पास ये नहीं, ये कर दो, ये दे दो, ये कर दो, मेरे पास ये नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो इसीलिए प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, क्योंकि दे फील ऑटोमेटिकली, नेचुरली दे फील दैट दे हैव सो मेनी थिंग्स इन देयर लाइफ दैट मेक्स देम टू बी थैंकफुल टू गॉड। वो सब हम ग्रांटेड लेते हैं, ये तो हमारा हक है। इसीलिए हम सही मायने में भक्त नहीं बन पाते ईश्वर के, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे रहते हैं या शिकायत लेकर के। भक्ति और कुछ नहीं है, जो कुछ मेरे पास है वो सब प्रभु का दिया हुआ है। ये एक्सेप्टेंस आपको सबसे बड़ा भक्त बना देगा, आपके माइंड को रिफॉर्म कर देगा। ये आना छोटी सी चीज है, पर ये अंदर आ पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसीलिए ये जरूरी है कि हम उस सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड को पैदा करें, और जो मेरे हमारे जीवन में है उसके प्रति हम अटेंटिव रहें कि मेरे पास क्या क्या है, क्या नहीं है इट शुड कम सेकेंड, मेरे पास क्या है वो फर्स्टली आना चाहिए, तब मेरे अंदर वो ग्रेटफुलनेस आने लगेगा। ईश्वर हर वक्त हमारे ऊपर कृपा करता है देवियों सज्जनों, फील करने की जरूरत है। हमारे पास हजारों चीजें हैं जो प्रभु की कृपा के बिना नहीं हो सकता, और वो अनगिनत चीजों को माने और ईश्वर के प्रति भाव रखें। पर अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, बार बार कंप्लेनिंग मोड पर रहते हैं, बार बार कम होने की मोड पर रहते हैं, तो धीरे धीरे हम इतना ज्यादा थैंकलेस होते जाते हैं कि पता चला कि हमारा अंदर बिल्कुल सूखा हुआ है, रूड हो चुका है, सूखा हुआ इंसान हम बन चुके हैं, जहां कोई रस अंदर नहीं है। जब मेरे अंदर कोई रस ही नहीं तो मैं क्या दूसरों को रस दूंगा, रस का मतलब आनंद है? मजा नहीं है। उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य को मैत्री उनकी पत्नी कहती है, बड़ा सुंदर बात कहते हैं, जो खुद से प्रेम करता है, हम दूसरों से जब प्यार करते हैं वो प्यार दूसरों से नहीं करते हैं, हम खुद से करते हैं, जो खुद से प्यार करता है वही दूसरों से प्यार कर सकता है, जो दूसरों से प्यार नहीं करता इसका मतलब है कि वो खुद से ही नहीं प्यार कर पाता है। जिस दिन हम खुद से प्यार करने सीखेंगे तो फिर हम दूसरों से भी प्यार करना सीख जाएंगे। इसीलिए अपने आप को सूखा ना बनाए, ड्राइड ना बनाए, रूड ना बनाए अपने अंदर को, उसको हरा भरा रखें, ग्रीन बनाए, उसको थोड़ा लिक्विड बनाए, तरल बनाए। वो तब होगा जब हमारे अंदर वो भाव आता है। तो अगेन जो मैंने रिपीट किया, हम जो हमें मिलता है हम भूल जाते हैं और जो नहीं मिलता है उसी के लिए रोते रहते हैं। इसका अर्थ नहीं कि आप रोए नहीं, परिश्रम ना करें, एफर्ट ना करें, वो करते रहे, पर मन में एटीट्यूड होना चाहिए कि मेरे पास कितना है। ये अगर आपके अप्रिशिएटिव मोड पर आपका मन हो तो बहुत सारी चीजें वैसे ही आसानी से हो सकता है। देवियों सज्जनों, अच्छे लोग तो रास्ता ढूंढते हैं थैंकफुल होने के लिए, बुरे से बुरे स्थिति में भी वो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं कि उसमें सुख कहां मिलेगा। हमने पहले भी एक स्टोरी आपको सुनाई थी, कोई रियल स्टोरी है। व्यक्ति हॉस्पिटल में बीमार था, कैंसर के बीमार था, ब्लड कैंसर का, और काफी इलाज के बाद ठीक नहीं होने वाला था। डॉक्टर ने उसको बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, एक महीना मैक्सिमम, एक डेढ़ महीने आपके पास है। जनरली जब किसी को ऐसा पता लगता है कि मेरे पास अब बहुत कम समय है तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाता है। तो डॉक्टर ने भी यही सोचा, नर्स ने भी यही सोचा, अब ये टूट जाएगा। इसीलिए डॉक्टर लोग बताते नहीं ये कितनी बड़ी बीमारी हो, पेशेंट को नहीं बताते हैं, क्योंकि वो उसको शक लगेगा। अगले दिन देखा वो व्यक्ति बड़ा खुश है, लोगों से मिलता जुलता है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड जाता है, अब वो लोगों से मजाक करता है, जोक सुनाता है, लंबे लंबे प्रार्थना में बैठता है, हर किसी से मिलता है जुलता है, बड़ा खुश लगता है। डॉक्टर ने पूछा, आपको ये सुनने के बाद दुख नहीं हुआ, आप ज्यादा खुश लग रहे हो? बोले दुख हुआ, क्योंकि एक डेढ़ महीना मेरा जीवन है, पर प्रॉब्लम है कि ये सच है और मुझे अच्छा लगा और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूं, फॉर्चुनेट समझता हूं कि मैं उन गिने चुने लोगों में एक हूं जिसको पता है कि वो कब मरेगा। मैं उसके हिसाब से मेरी लाइफ की प्लानिंग तो कर सकता हूं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये सौभाग्य ही नहीं होता है कि उनको पता रहे कि कब वो जाने वाले हैं, उसके हिसाब से वो कुछ प्लानिंग करें। मुझे पता है मेरा अब डेढ़ महीने बचा, तो मेरी जो बचा हुआ काम है मैं पूरा कर सकूं, प्रभु को थैंक्स कर सकूं, लोगों से मिलजुल सकूं, लाइफ को अच्छी तरह जी सकूं, दुखी होकर क्यों रहूं? दैट इज का पॉजिटिव एटीट्यूड। ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? वही ग्रेटफुलनेस है। वो दुख में भी वो सुख की किरण को ढूंढ लेता है, द रे ऑफ हैप्पीनेस ढूंढ लेता है। और हम स्वस्थ होकर भी ढूंढते रहते हैं कहां दुख का किरण दिख जाए, हम किसी को ब्लेम करने लगे। तो अच्छे लोग बुरी परिस्थिति में भी अच्छी चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। और प्रेयर या प्रार्थना, हमारे यहां प्रार्थना शब्द तो नहीं था, पूजा शब्द का अर्थ यही था, कुछ मांगने के लिए नहीं, हमेशा इस ये फीलिंग के साथ जीने की कि ईश्वर ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। ये जो ग्रेटफुलनेस है ईश्वर के प्रति, यही है प्रार्थना। बाकी तो जो कुछ आपको मिलेगा अपने परिश्रम, अपनी बुद्धि से आपको मिलेगा। इसीलिए Let us be grateful to people who make us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossom. ऐसा नहीं कि सिर्फ ईश्वर के प्रति हम थैंकफुल रहे, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसका भी हमारे जीवन में कोई कंट्रीब्यूशन है, हम उसको याद रखें। हमने एक छोटी सी कहानी सुनी थी। एक भारत में गांव में जो डाकिया होता है, पोस्टमैन होता है, उनका तनख्वाह बहुत कम होता है, तो वो दिवाली होली वगैरह में गिफ्ट भी मांगते हैं। तो एक डाकिया एक दिन एक पार्सल आया था, किसी के घर में गया, दरवाजा खटखटाया, बोला कोई घर में है? तो घर से आवाज आया कि मैं आ रहा हूं, वेट करो। तब एक मिनट गया, डेढ़ मिनट गया, वो बार बार चिल्ला रहे, अरे आ जाओ, मैं आ रही हूं, वेट करो, मैं आ रहा हूं, अगर आपको बहुत ज्यादा देर हो तो रख करके चले जाओ। पर पार्सल था, साइन कराना जरूरी था। तो डाकिया बड़ा इरिटेट हो चुका था, दो चार मिनट बीत चुके थे, सोचा दरवाजा कोई खुलेगा तो मैं उसको दो सुनाऊंगा कि कोई तरीका होता है, बाहर खड़ा हुआ आदमी को आप रुको रुको कहते और आते नहीं हो। चार पांच मिनट के बाद दरवाजा खुला तो देखा तो शॉक्ड हुआ। ये लड़की है 15-16 साल की, पर वो हैंडीकैप्ड है, उसके दोनों पैर नहीं है, वो चल नहीं सकती है, तो उसको आने में टाइम लगता है, इसीलिए वो समझ गया डाकिया। तो वो गुस्सा करने जा रहा था पर चुप हो गया, ऐसी हालत देख करके चुपचाप पार्सल पकड़ा दिया और साइन करा के चला गया। उसको अंदर अंदर फील हुआ। अब बात गई, अब जब भी उसकी डाक आए, डाकिया को पता है कि घर में लड़की है जो हैंडीकैप्ड है, आसानी से चल नहीं सकती है, वो आवाज देता था तो लड़की अंदर से बोलती थी कि चिट्ठी डाल के चले जाओ, बोले नहीं मैं वेट करता हूं। अब वो वेट करता था चार मिनट, पांच मिनट, दस मिनट, जितना भी टाइम लगे, लड़की आती थी, डोर खोलती थी तो उसको वो चिट्ठी या जो भी पार्सल जो भी है उसको पकड़ा कर जाता था। ऐसे हमेशा वो करता रहता था। डाकिया गरीब था, पैरों में उसके चप्पल नहीं थे। ये लड़की ने देखा कि डाकिया भैया के पैर में चप्पल नहीं होते, खाली पैर चलता है। दिवाली का समय आया और गांव के जो डाकिया होते हैं वो जनरली सबके घर जाते हैं, भाई गिफ्ट दो, थोड़ा फोर्सफुली मांगते हैं, कोई कुछ देता है, कोई 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, जिसके पास जो है वो देते हैं गिफ्ट के रूप में, दिवाली इसके रूप में। उसको पता है इस घर में लड़की है, देने वाली नहीं है, तो भी दिवाली विश करने के लिए उसके वो दरवाजा खटखटाया। तो लड़की ने दरवाजा खोली, उसने दिवाली विश किया और जाने लगा, तो लड़की ने बोला नहीं रुको भैया, आपके लिए एक दिवाली की गिफ्ट है। तो लड़की ने अंदर गई और पैकेट लेकर के आई और उसको पकड़ाया, बोला ये तुम्हारी दिवाली की गिफ्ट है, घर में जाकर खोलना। डाकिया अपना घर गया, जो भी गिफ्ट थे उसको खोला, देखा उसमें एक जोड़े चप्पल थे। तो उसका इमोशन कंट्रोल में नहीं रहा और वो इतने ज्यादा इमोशनली चार्ज हुआ, तो वो अपने पोस्टमास्टर से बोला कि मेरा आप ट्रांसफर करा दो। पोस्टमास्टर ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले मैं आप इस गांव में नहीं जा सकता, मैं इतना ज्यादा इमोशनली चार्ज हूं। उसने अपनी स्टोरी सुनाई, हैंडीकैप लड़की है, मैं सिर्फ उसके लिए वेट करता था कि वो दरवाजे तक आकर चिट्ठी ले जाए, और वो इतना ज्यादा ग्रेटफुल थी कि उसने कभी ऑब्जर्व किया था कि मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, वो अपने पैसे से चप्पल खरीद के मेरे लिए संभोर कर रखी थी। आज तक मेरे जीवन में मुझे किसी ने इतना रिस्पेक्ट दिया नहीं था। तो देवियों सज्जनों, जो अच्छे लोग होते हैं वो मौका ढूंढते हैं अपने ग्रैटिट्यूड को दिखाने के लिए। छोटी सी लड़की जो हैंडीकैप्ड है, जिसके पैर नहीं है, उसके मन में ये भाव आया कि कितने लोग आते हैं जाते हैं पर ये डाकिया मुझे जो रेस्पेक्ट देता है सिर्फ एक चिट्ठी पकड़ाने में, उसके बदले में मैं क्या कर सकती हूं। तो उसके पास जो नहीं था उसको फील हुआ, उसने एक जोड़े चप्पल खरीद के उसको दिया। तो ये जो भाव है कि मेरे लिए किसी ने कुछ किया है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, ये जो फीलिंग है, वो चप्पल जरूरी नहीं है कि कोई 500 रुपए या 200 रुपए के हो सकता है, वो 20-25 रुपए के चप्पल हो, पर उसके साथ जो इमोशन जुड़ा हुआ था वो बहुत बड़ी बात होती है। वो इंसान को ज्यादा खुश करता है, उसके मन को उद्वेलित करता है। इसलिए ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए, थैंकफुल होने के लिए आपके पास एंडलेस रीजंस हैं, पर अगर आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पता नहीं आपके लाइफ में कहां कहां कौन से मोड पर, कौन सी सिचुएशन पर कितने लोग आपको हेल्प करके चले जाते हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, किसकी बातों पर, किसी की हेल्प पर, किसी की फिजिकल हेल्प पर, किसी की सिर्फ कोई गाइडेंस पर, हमारे जीवन में कहां कहां बदलाव आता है, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो जब हम इसको रिकॉग्नाइज करने लगे, इफ एवर यू फील लाइफ इज डल, दैट इट इज नॉट अ जूसी, मैंने कहा जैसे रस ना हो, इट शुड बी, इट मीन्स gratitude has not happened in you. Solution क्या है, उसको cultivate करें। जो मेरे पास है वो भी किस उसी का दिया हुआ है जिसको हम निंदा करते हैं, उस ईश्वर को। और वो feeling मेरे पड़ोसी से लेकर के जाने अनजाने में लाखों करोड़ों लोग जिनका मेरे जीवन में contribution है आज तक इस level पर पहुंचने के, वो अगर आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड का सेंस है तो आपका जीवन कभी भी सूखा नहीं होगा, डिप्रेशन में भरा हुआ नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं जिएंगे। इसका अर्थ नहीं कि आपके जीवन में दुख नहीं होगा, दुख होना, पर उस दुख को आप ज्यादा मजबूती के साथ फेस कर सकते हैं। सो व्हेन यू कैरी कॉजलेस ग्रैटिट्यूड विथ यू, life will be sweet all the time irrespective of external circumstances. Circumstances अच्छे होंगे, बुरे भी होंगे, पर आपका life खुशहला रहेगा। एक दो बात और करके समाप्त करेंगे। Indian concept of thanksgiving, जैसे मैंने कहा कि एक social behavior होता है, वो कल्चरली अलग अलग होता है, वेस्ट का अलग है, ईस्टर्न का अलग है। हमारे यहां बात बात पर थैंक्स प्लीज बोलने की आदत नहीं थी, अभी भी नहीं है बहुत सारे जगह। जो वहां रहते हैं उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो यहां से जाते हैं उनको थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो फीलिंग पता लगता है। पर हमारे शास्त्र और हमारी सोसाइटी में ये नेचुरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि व्यक्ति ग्रेटफुल होता है और वो उसके एटीट्यूड से लगता है। पर प्रॉब्लम जो बहुत बारीकी से हमारे यहां नोट किया जाता है कि आप दूसरों से ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट ना करें। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो आप ग्रेटफुल नहीं हो पाएंगे, आप अपने ईगो को पॉलिश करते हैं, नर्चर करते हैं, फिर आप जीवन भर दुखी रहेंगे। अपने अंदर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड लाएं, दूसरों के प्रति ग्रेटफुल बने, न कि दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि आपने उसके लिए क्या किया और सामने वाला ऐसा रिएक्ट करता है। ये आपको ज्यादा दुखी बनाता है। हमेशा ध्यान रखिए, अच्छी चीजें जब हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वो दुखी देता है, कि सामने वाला कैसा होगा वो आपके हाथ में नहीं होता है और आप सारी दुनिया को बदल नहीं सकते। हम अपने बच्चों को तक नहीं बदल सकते तो दुनिया को क्या बदलाएंगे। पर खुद के अंदर ये सेंस आना चाहिए। इसलिए हमारे यहां होता है किसी को हेल्प करो, दान दो, वो गुप्त होना चाहिए, पता नहीं होना चाहिए। ये सबसे सबसे बढ़िया दानों में माना जाता है, सबसे बढ़िया हेल्प में माना जाता है। जब आप किसी की हेल्प करते हो या कुछ दान देते हो और दाएं हाथ में दिया हुआ दान बाएं हाथ को पता नहीं चलता। सो यू मस्ट नॉट सीक रिवॉर्ड, नॉट इवन ग्रैटिट्यूड और थैंक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट। इसीलिए जो मैंने वो लंदन की महिला की बात कही, उसके इंडियन एक्सपीरियंस की, उसको बहुत सारे जगह लोग इसके लिए बोलते थे कि ये तुम कुछ ज्यादा ही फॉर्मल होते हो, हमें अच्छा नहीं लगता। उस सोसाइटी में ये ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप मुझे हर चीज के लिए थैंक्स, मामा ने अच्छा खाना बनाया, थैंक्स मामा, बोलने की जरूरत नहीं है। पर आपका व्यवहार समझ में आ जाता है मां को कि आप मां के प्रति कितने ज्यादा सम्मानशील हैं। थैंक्स बोल करके जब बुढ़ापा आ जाए छोड़ के बीवी के साथ भाग जाना, ये कौन सा थैंकफुल देखनेस है। हर व्यक्ति समझता है, बेवकूफ नहीं होता है। आप क्या बोलते हैं और आपके अंदर क्या, अगर कोई एक्सपेक्ट करता है मुझे थैंक्स क्या ही नहीं बोला, तो आई थिंक इट्स लिटिल बिट लेस इंटेलेक्चुअली वो लेजर पर्सन है, जो सिर्फ वर्ड थैंक्स में खुश हो जाता है, बाकी वो एक्टिविटीज में आपको कैसा भी करे, घर से धक्का दे दे तो भी यू डोंट हैव प्रॉब्लम। पापा ने मेरे लिए ये किया, थैंक्स पापा। क्या क्या बात के लिए थैंक्स करोगे पापा को, फील करो। इट शुड बी, यू हैव टू कल्टिवेट द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इन यू। वो जो शो है वो अपने आप आना चाहिए। यू डोंट नीड टू बी ए मैकेनिकल, ए रोबोट टू से थैंक्स और सॉरी। इसीलिए एक्सपेक्ट ना करें कि सामने वाला आपके प्रति ग्रेटफुल है कि नहीं, हम कितना ग्रेटफुल हैं ये हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। और उसी का जो ओवरऑल निचोड़ है हमारे यहां ये थैंक्स गिविंग का, वो पंच महायज्ञों में हमारे शास्त्रों में बताया गया कि हर व्यक्ति अपने जीवन में ये पांच महायज्ञ करे। ये महायज्ञ क्या, वो जो आपके ऊपर किसी ने कुछ उपकार किया है, वो जो आपके अंदर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है उसके आप शो करो। ईश्वर की भक्ति करना ब्रह्म यज्ञ है। क्यों भक्ति करें, क्योंकि ईश्वर की कृपा हमें मिली है। ये नेचर के जितने एलिमेंट्स है, हवा पानी पेड़ पौधे, उनके कारण मेरा जीवन है, उनके प्रति मैं ग्रैटिट्यूड दिखाऊं तो देव यज्ञ करता हूं। माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स जिनके कारण मुझे ये खूबसूरत जीवन मिला है, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड शो करता हूं, इसको हम पितृयज्ञ बोलते हैं। सोसाइटी में जो लोग सेल्फलेसली काम करते हैं, प्राचीन काल में वानप्रस्थी और सन्यासी हुआ करते थे, आजकल आप कह सकते हैं जो सोशल सर्विस करते हैं सेल्फलेसली, अपनी भलाई के ना सोच के दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, एनजीओ हो, या कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए हम अतिथि यज्ञ करते हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, वो संसार का हर वो प्राणी, कीड़ा मकोड़ा छोटा मोटा हर वो प्राणी जो इनडायरेक्टली मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है, उसके प्रति भी मैं ग्रेटफुल हूं, मुझे होना चाहिए, इसीलिए मैं भूत यज्ञ करता हूं, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए दाना डालता हूं, खाना खिलाता हूं। तो हमारा अपना ट्रेडिशनल वे ऑफ थैंक्स गिविंग, जिसको हम पंच महायज्ञ में समेट के रखते हैं कि संसार में जिस जिस का मेरे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है, मैं वो सबके प्रति कुछ ना कुछ करूं, टू शो माई सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, आई एम ग्रेटफुल टू यू। हम धीरे धीरे उस पंच महायज्ञ की कंसेप्ट को भूल गए, जो कि बहुत ट्रेडिशनल, फुल ऑफ असेंस सब्सटेंस था, पर वो हमारा ट्रेडिशनल थैंक्स गिविंग था। आखिर में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, फॉर द ब्रीथ दैट सस्टेन्स माई लाइफ, फॉर द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, फॉर द फूड ऑफ दिस अर्थ दैट नर्चर्स लाइफ। आई एम ग्रेटफुल अगेन फॉर बिलव्ड वंस हु शेयर लाइफ विथ मी, दोज इन आवर वर्ल्ड बिसाइड मी एंड दोज इन वर्ल्ड्स बियॉन्ड माई नोइंग। हजारों लाखों ऐसी लोग हैं, चीजें हैं जो मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं पर मुझे पता नहीं है। For the love of family and friends, without whose there would be no life. Oh God, we thank you for the mystery of this creation, for the beauty that the eye can see, for the joy that the ear may hear, for the unknown that we cannot behold, filling the universe with wonder, for the expanse of space that draws us beyond the definitions of ourselves. We thank you, God, for setting us in communities, for families who nurture our becoming, for friends who loves us by choice, for companions at work who share our burdens and daily tasks, for strangers who welcome us into their midst, for people from other lands who call us to grow in understanding, for children who lighten our moments with delight, for the unborn who offer us hope for the future. We thank you for this day, for this life, for this opportunity, for the neighbors, for your grace, for these and all the blessings, we give you thanks, eternal loving God. Be thankful in your life, you will have a happy life. Thank you very much. Isi ke saath, bahut bahut dhanyavaad. Aapko happy Thanksgiving Day.